प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे ऊंचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझाए, प्रभु के सिमरन सब किस सुझाए, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए, प्रभु जी वसे साथ की रसना, नानक जन का दासन दसना।
ओम शांति। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, परमात्मा सिमरन सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सबसे ऊंचा है, परमात्मा की ही महिमा है। आज सुबह की मुरली गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, परमात्मा की याद सबसे ऊंची है। क्यों? परमात्मा याद सर्वोच्च सबसे ऊंची है। क्यों? उसके ऊपर और किसी की याद नहीं। दुखी ही दुखी। आज सुबह की साकार मुरली, मनुष्य क्या है? दुखी ही दुखी। इस संसार में जितने मनुष्य है, चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो, उनको याद करके कभी भी मनुष्य आत्मा सुख को पा नहीं सकती। ये जीवन का एक बहुत बड़ा नियम है। कितना भी अच्छा हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, सुख मनुष्य से नहीं मिल सकता। मनुष्य से सुख नहीं मिलता क्योंकि जैसे ही कोई सुख देने लगता है, हमारी उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि वो दे जो हम चाहते हैं, और वो एक समय के बाद वो नहीं देता है, इसलिए फिर हम दुखी होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वो अब सुख देना बंद कर रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम अभी उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी ने हमको एक दिन कुछ दिया, हम चाहते हैं कि वो रोज दे। किसी ने हमको कुछ एहसान किया, हेल्प की, मदद की, हम चाहते हैं कि वो रोज ही करे, और ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए मनुष्य आत्मा कभी मनुष्य को तृप्त कर ही नहीं सकती। और क्या कारण है कि मनुष्यों की याद सर्वोच्च नहीं है। मनुष्य को याद करके नुकसान क्या होता है? वो हो गया दुख, और फिर दुख, और नीचे ही गिरेंगे। और परमात्मा से बुद्धि योग टूटा रहेगा, नीचे गिरते रहेंगे। और एक है भगवान की याद, एक है मनुष्यों की याद। मनुष्यों की याद से क्या क्या होता है? वायरे होकर घूमते रहेंगे। मनुष्यों की याद से क्या क्या होता है? कर्मिक अकाउंट्स बनते, बहुत पावरफुल पॉइंट है। सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट्स बनते हैं। जैसे हम यहाँ हैं और हम किसी को कंटिन्यूअस याद करके करते जा रहे हैं, ठीक है? हमने उससे कुछ कहा नहीं, उसने हमसे कुछ नहीं कहा, परंतु हमारे प्रकंपन तो पहुंच रहे ना उस तक। यदि वो विकार के संकल्प है तो उस तक वो विकार के संकल्प पहुंचेंगे। यदि वो व्यर्थ संकल्प है तो वो व्यर्थ उस तक पहुंचेगा। यदि वो नकारात्मक संकल्प है, निगेटिव, जैसे मैं यहां हूं और किसी के लिए मैं कंटिन्यूअस निगेटिव चिंतन कर रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक, अपने आप, उससे कुछ कहा नहीं, ना ही मैसेज किया, ना फोन किया, कुछ नहीं किया, खाली निगेटिव। प्रश्न है क्या उस आत्मा पर इसका कुछ असर हो रहा है? होगा, सूक्ष्म, क्योंकि ये भी निगेटिव ही एक याद है। जैसे रावण या कंस, कंस दिन रात कृष्ण ही दिखाई देता था। क्यों? डर के मारे। पानी देखता था उसमें कृष्ण दिखता था, भोजन करता था उसमें कृष्ण दिखता था, हर जगह रावण को, कंस को कृष्ण ही दिखता था और रावण को राम। एक रीति से जुड़ा हुआ था वो भी याद से। याद एक है विकार वाली याद, एक व्यक्ति दूसरे को याद कर रहा है विकार के लिए, देह के लिए, एक दूसरों को याद कर रहा है व्यर्थ चल रहा है, क्योंकि हो सकता है उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम डिस्टर्ब हो गए और सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। तीसरा है निगेटिव, बहुत ज्यादा निगेटिव चल रहा है किसी के प्रति, पर दबे हुए हैं क्योंकि कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि वो हायर पर है, हम लो है, तो दब गए। अब क्या करें, वो प्रेशर कुकर की तरह वो भावनाएं फीलिंग्स अंदर जमा होती जा रही है, पर ये याद भी उस तक तो जा ही रही है, और जैसे हमारी निगेटिव है तो वहां से निगेटिव ही आएगा, हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, हमारा व्यर्थ है तो उधर से व्यर्थ आएगा, हमारा विकार है तो वो धीरे धीरे वो भी वैसा होने लगेगा, यदि वो इतना शक्तिशाली नहीं है तो। हम शक्तिशाली आत्मा को कम शक्तिशाली आत्मा अपने लेवल पर ला सकती है, शक्तिशाली आत्मा कम शक्तिशाली को अपने लेवल पर लाने के लिए बहुत मेहनत है, पर कम शक्तिशाली शक्तिशाली को बहुत जल्दी खींचती है नीचे, क्योंकि वो जो शक्तिशाली बना है उसमें कम शक्तिशाली होने के संस्कार छिपे हुए हैं जन्म जन्म के, वो तो अभी अभी शक्तिशाली बना ना, इसके लिए वो उस आत्मा को खींच सकती है। नीचे उतरना बहुत सहज है, ऊपर चढ़ना कठिन है, स्थिति शक्तिशाली बनाना ये बड़ा काम है, और नीचे उतरने को कितना टाइम लगता है, सेकंड, कारण कितने लगते हैं, कुछ भी नहीं, ये मेरी जगह है तो मेरी सीट पर क्यों बैठे, इतना ही कारण काफी है, मेरी सीट पर क्यों बैठे, ऊपर से सीधा नीचे, मैंने बोला था ये नहीं करना फिर भी किया, इतना बोला और नीचे, तो नीचे उतरना बहुत आसान है। और मनुष्य की याद क्या करती है, एक तो कार्मिक अकाउंट्स बना देती है और दुख देती है, कार्मिक अकाउंट्स बनाती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और फिर लगाव, हाँ ये तो बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि लगाव उत्पन्न होता है उस आत्मा में, किसी एक को याद करते रहो तो उससे बात करने की इच्छा होती है, फिर उससे बात नहीं करो तो बेचैनी होती है, मिलने के लिए, बाकी लंबा प्रोसेस चालू हो जाता है, फैमिलियरिटी, दोस्ती, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, लेन देन, गिफ्ट्स, सौगात, मैसेजेस, लेन देन, मैसेजेस की लेन देन, पहले मैसेजेस की फिर स्थूल, ये सारा चालू हो जाता है, चक्र इतना जबरदस्त है, और जो इसमें फंसता है उसको तब पता चलता है पूरा फंसने के बाद, जब वो निकल नहीं सकेगा तब, शुरुआत में ही पता हो तो घुसेगा ही नहीं, अभिमन्यु का चक्र भी हुआ है, अंदर गया फंस गया उसके बाद मुश्किल है निकलना, क्योंकि बंधन इतने जबरदस्त है, इसलिए लगाव हो सकता है, और घृणा हो सकती है, नफरत भी हो सकती है, और मनुष्य की याद क्या करती है, आंतरिक शक्तियों को नष्ट भी करती है, टाइम वेस्ट कहो जो भी कहो पर जा रहा है ना, वेस्ट ही कहेंगे एक रीति से तो, पर जा रहा है टाइम, यहां पल पल के लिए श्रीमत क्या मिली और हम कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो कही है, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा और कोई नहीं है, क्यों हम कॉम्प्रोमाइज करें कि जो ऊंचा है उसको छोड़ के नीचा वाला ले, क्योंकि नीचे वाले में दुख है, असुरक्षा है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, वो कहीं छोड़ के चला गया तो अभी किसी को आधार बना लिया, ठीक है, और आधार बनाया और फिर वो चला गया दूर, तो एक सेंटर पर दो लोग हैं, एक ने दूसरों को आधार बना के रखा है दूसरे को, और वो चला गया तो फिर दुखी, किसी से दोस्ती पकड़ जमा के रख दी, कि वो है तभी हम वॉकिंग को जाएंगे, वो है तब हम मुरली में जाएंगे, वो है तब हम एक्सरसाइज करेंगे, जो भी। और जिस दिन वो चला नहीं है तो फिर बेचैनी, दर्द, पीड़ा। इसलिए क्या कहा, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। डिवाइन लव इज द सुप्रीम, परमात्मा प्रेम जो है ना वो सुप्रीम है, उसके ऊपर इस संसार में कोई भी प्रेम नहीं है। क्योंकि ये सारे जो प्रेम है गिराने वाले है, दुखी करने वाले, अपेक्षा को जन्म देने वाले है, इनमें कहीं ना कहीं व्यक्ति बट जाता है, उसके विचार और एक फ्रस्ट्रेशन आता है, बेचैनी होती है, सबसे मेन तो अस्थिरता है। और जो मन अस्थिर है, खंड खंड बटा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, एक दूसरा चीज है। मनुष्य की याद कॉन्सेंट्रेशन को भंग करती है। जो प्रेमी होते हैं लवर्स, उनको बोलो कोई साहित्य की किताब पढ़े, नहीं पढ़ पाते, एकाग्रता नहीं है। उनको बोलो कोई रीडिंग करे, कोई भी साहित्य, लिटरेचर या कोई कुछ भी, वो स्पिरिचुअल ले लो, नहीं कर पाएंगे। मुरली ले लो, जो यहां वाले हैं उनके लिए बता रहे हैं। मुरली शब्द तो पकड़ में आ जाएंगे, हाथ में आ जाएंगे, लिख भी लेंगे, पर हाथ में आने जैसी बात नहीं है। इस ज्ञान के लिए बुद्धि बहुत ज्यादा स्वच्छ और एकाग्र चाहिए। होली हंस संडे की मुरली, होली हंस की स्थिति का आसन का क्या बताया, सुबह वही बताया, एक बाप दूसरा न कोई आसन है। तो इसमें बुद्धि एकाग्र चाहिए, जिसकी बुद्धि, इसमें बुद्धि बुद्धिमान और कम बुद्धिमान की बात नहीं है। दो व्यक्ति है, एक ज्यादा बुद्धिमान एक कम बुद्धिमान, पर अगर कम बुद्धिमान एकाग्र हो तो वो उस बुद्धिमान से ज्यादा अच्छा है जिसकी बुद्धि भटक रही है। बुद्धिमान होने से कुछ थोड़ी ना होता है खाली। बीरबल भी बुद्धिमान था पर वो राजा बना गया कभी? बुद्धिमान तो बीरबल भी था, पर बुद्धिमान होना मतलब जरूरी नहीं, वो अकबर नहीं बन सकता चाहे कितना भी बुद्धिमान हो। बुद्धिमानी सब कुछ नहीं है, और भी चीजें हैं, एकाग्रता। तो जैसे मनुष्य की याद करते हम, बुद्धि बहुत सारी इच्छाओं में बढ़ती है, अपेक्षाओं में बढ़ जाती है, एकाग्र नहीं हो पाती, अस्थिरता होती है। ये मनुष्य की याद के गुण है। और परमात्मा की याद, जैसे हम बाबा की याद में बैठे हैं और एकाग्र है, कोई हलचल नहीं है इसमें, स्थिरता है। क्योंकि जो सागर है वो स्थिर है, परमात्मा, और उसके साथ हम भी स्थिर हो जाते हैं। मनुष्य स्वयं हलचल में है, उससे बुद्धि योग लगेगा, हम भी हलचल में आएंगे। पति पत्नी जीवन भर लड़ते रहते हैं पर एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर उसी को जीवन कह के चलते रहते हैं, परंतु हलचल में रहते हैं। मैं संसार के व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। जब तक वो रूहानी संबंध नहीं बनता, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, हलचल चालू रहेगी। हाँ, एक तो याद उसकी सबसे ऊंची है, और फिर हमारे जो आपसी है उसमें स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटैचमेंट। चाहे पुरुष पुरुष, पुरुष स्त्री, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, या ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी, इन में से कहीं पर भी अटैचमेंट आया कि गिरावट चालू, और उनको भी नहीं पता चलेगा कब गिरावट आ गई। गिरना चालू हो ही जाएगा, क्योंकि आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। चाहे व्यक्ति मधुबन में हो और दूसरा सेंटर पर हो, या गृहस्थी में हो या और कहीं हो, जहां पर अटैचमेंट चालू हुई वहां पर गिरना चालू। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सारे संबंधों में अटैच। काम हुआ, बाय बाय, तुम उधर हम इधर, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। अभी दूसरा प्रश्न है कि भगवान का सिमरन सबसे ऊंचा क्यों है, ये तो बताएं मनुष्य की याद, अभी भगवान की याद सबसे ऊंची है क्यों? कहीं और जाने की जरूरत नहीं, एक परिस एक में सब कुछ मिल जाता है और सर्व प्राप्ति और सबसे ऊंचा बनाता है और भटकाता नहीं है और बुद्धि स्वच्छ बन जाती है और भगवान की याद सबसे ऊंची है इस संसार में, उसके ऊपर और किसी की याद नहीं है। सर्व संबंधों की रसना एक से आ सकती है और किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना? किसी और का डिपेंडेंस, डिपेंडेंस में बहुत दुख है। पैरासिट, पैरासाइट होता है ना, दूसरे पर डिपेंडेंट, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस में बहुत दुख है। दूसरों को, दूसरा का आश्रय ले लेना, दुख है उसमें। और प्राप्ति, भाग्य, वरदान, सुरक्षा और कभी भी याद कर सकते हैं और कभी भी मिल सकते हैं। ऑलवेज अवेलेबल, गॉड ऑनलाइन है हमेशा, हम ही ऑफलाइन रहते हैं। और निश्चिंत दारिद्र्य और भरोसा। तो प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूंचा, उधरे मूंचा अर्थात सबको बचाने वाला है, एक को नहीं, जो जो उसके पास आएगा सब बचेंगे। कौन सी चीज से बचेंगे? व्यर्थ से, निगेटिव से, पाप से, विकार से, विकर्म से, कुकर्म से। ब्राह्मण जीवन में पाप होते रहना, ब्राह्मण बनने के बाद भी, ब्राह्मण बन गए, मधुबन में है या और कहीं है, सेवा केंद्र में या घर पे है, परंतु ब्राह्मण बनने के बाद भी रोज थोड़े थोड़े सूक्ष्म पाप हो रहे हैं। यज्ञ के किले में रहते हुए भी पाप थोड़े थोड़े हो रहे हैं, अर्थात याद में नहीं है। प्रभु के सिमरन उधरे मूंचा मतलब हम यदि उस याद में है तो बच जाएंगे। स्वयं को बचा के रखना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। किससे बचाएंगे स्वयं को? किससे बचाएंगे? संग दोष से, उन आत्माओं से जो कम पुरुषार्थी है, क्योंकि कम पुरुषार्थी वाले अपनी तरफ खींच लेते हैं। जिनको पुरुषार्थ में रस नहीं है, जिनको व्यर्थ में रस है, जिनको रस है व्यर्थ की बातों में, दिन रात भोजन में डूबे हुए या घूमने फिरने में डूबे हुए या व्यर्थ की चर्चाओं में डूबे हुए, ये कुसंग है श्रेष्ठ आत्माओं के लिए। स्वयं को कुसंग से बचा के रखने के लिए याद सबसे जरूरी है। एक और साधना का संग, ओके। और किससे बचाता है? साधनों में डूबने से। नहीं तो साधन ऐसे है कि खींच लेते हैं, सक कर लेते अपनी तरफ, व्यक्ति करने कुछ जाता है इसमें और पहुंचता कहीं और, चालू कहीं से करता है निकलता कहीं और से, द्वार से घुसता है गटर में घुसता है निकलता है बाहर, इंटरनेट ढूंढने कुछ जाता है पहुंचता कहीं और है। जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो क्या करेगा? तो और किससे बचाती है? भगवान की याद। व्यर्थ से, निगेटिव से, विकार से, साधनों में डूबने से और माया से, प्रशंसा, नाम मान शान, ये एक दूसरी सबसे बड़ी माया खड़ी है। प्रशंसा और नाम मान, एक्नॉलेजमेंट, ये जो है ना, ये भी खींच लेता है अटेंशन। फिर धन, धन धन, योगी बन जाता है व्यक्ति पर धन का आकर्षण बना रहता है, धन का आकर्षण छूटता नहीं, अपने तरीके से धन का आकर्षण होता है, तो धन में रहता है। धन का आकर्षण होने का संबंध धन होने या न होने से नहीं है। जिसके पास नहीं है उसका हो सकता है बहुत ज्यादा आकर्षण है, और जिसके पास सब है उसको कोई आकर्षण नहीं है। उसका रखने और न रखने से कोई लेना देना नहीं है। ये भी हो सकता है कि किसी ने हजारों रखे हुए पर उसका कोई लेना देना नहीं है, संपूर्ण नष्ट हुआ है उससे, कोई आसक्ति कोई लोभ ही नहीं है उसमें, यह भी अवस्था हो सकती है। तो वो मन की स्थिति है वास्तव में, मन को अलोभ बनाना है आंतरिक, और भ्रष्ट होने से बुद्धि को बचाता है, नहीं तो बुद्धि विनाश की ओर भागती है। विनश्यंती विनाश की ओर भागने का उसका ये है। और संकल्पों का उधेड़बुन, संकल्पों की जिसको कहेंगे हलचल, जिसका मन संकल्पों की हलचल में है, क्या वो एकाग्र हो सकेंगे? बहुत तेज संकल्प चल रहे हैं, नहीं होता है। और समय, इच्छाएं अल्पकाल की प्राप्ति से, तो प्रभ के सिमरन उधरे मूचा अर्थात परमात्म याद, परमात्म सिमरन, परमात्म प्रेम, ईश्वरीय याद, रिमेम्बरेंस, योग, ये हमको बहुत सारी चीजों से बचा देता है। इसके लिए लक्ष्य रखना है, योग का चार्ट बढ़ता जाए। जरूरी नहीं कि बैठकर ही करना है, पर बैठकर करना भी बहुत जरूरी है। दिन भर तो कर ही रहे, पर वो याद नहीं रहती जो बैठकर हो सकती है फिक्स टाइम पर, इसके लिए वो बहुत जरूरी है। तो सबसे ऊंची है याद, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बचाने वाली है। तीसरा है प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, तृष्णा प्यास, इच्छाएं, जो संसार की इच्छाएं है कभी भी पूर्ण नहीं होती है। उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनका टेम्परामेंट, उसका स्वभाव ही है अतृप्ति। भोग का जो स्वभाव है वो क्या है? अतृप्ति। कितना भी भोगो, भोग हमको भोगते हैं, हम भोग को नहीं भोगते हैं। भोग भोग के हम नष्ट हो जाते हैं, पर प्यास जाती नहीं है। इतनी गहरी प्यास है भोग की, और साधारण संकल्प से नहीं होगा वो। कल की मुरली में था दृढ़ संकल्पधारी, कल मतलब संडे की मुरली में, कुमार अर्थात दृढ़ संकल्पधारी, बिजी मैन, बिजनेसमैन नहीं। यह एक बात बुद्धि में रखो, एक बात पर अटेंशन। किस बात पर अटेंशन? बिजी मैन, बिजनेसमैन नहीं। और एक बात बुद्धि में रखो, कौन सी बात बुद्धि में रखो? मेरा बाबा और मेरी सेवा, बस। और बाकी झंझट में जाना ही नहीं है किधर, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन किधर गया, किधर क्या चालू है, यहां वहां। स्वयं को इन सब तरफ से अलग। तो तृष्णा, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, इनका जो स्वभाव है बाहर की ओर भागती है। ये योग में ही एक बल है जो ये सारी इच्छाओं को कम कर देगी, क्योंकि तर्क से कितना भी समझाओ वो नहीं समझती है। योग से क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि योग में जैसे ही आत्मा देह से अलग होगी और अशरीरीपन का उसको अनुभव होगा, उस अवस्था में ही अपने आप इच्छाएं समाप्त होगी। तब तक इच्छाएं रहेगी, हम कितना भी समझाओ यह इच्छा मुझे नहीं करनी चाहिए, यह इच्छा तो इल श्रीमत के विरुद्ध है, इल्लीगल, परंतु मन ने माना, परंतु इमोशंस खींचते, ये उधड़बुन में रहता है व्यक्ति। एक कहता है नहीं, एक कहता है हाँ, एक कहता है हाँ, एक कहता है नहीं, द्वंद चालू रहता है। इसलिए इन दोनों द्वंद से इधर और आत्मा रूप में स्थित हो जाना, और जैसे ही हम आत्मा रूप में स्थित है, परमात्मा शक्तियां उसमें भरने लगेगी, और वो जैसी पावर आएगी अपने आप उससे मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो कोई जैसे ए और बी, ए को बी से लगाव है और बहुत सारी इच्छाएं हैं बी से, बी को भी ए से लगाव है और बहुत इच्छा है, दोनों एक दूसरे के लगाव में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो इच्छाएं हैं इतनी सारी कैसे मुक्त हो, ये भी समझा रहा है अपने आप को, ये होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको नहीं होती तो इधर इधर होती है, कभी इधर होती है कभी इधर होती है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब क्या किया जाए कि इस चक्र से ही व्यक्ति मुक्त हो जाए? योग, योग का अभ्यास, जिसमें वो अनुभव करे मैं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ये रोल है, ये व्यक्ति मैं हुई नहीं, मेरा अपना अस्तित्व ये है, माय रियल, मेरा जो रियल स्वरूप है वो ये है, मेरी रियल हस्ती। आज की मुरली में ना गीता खंडन करने से भगवान की हस्ती गुम कर दी है, आ जाए ना सुबह, भगवान की हस्ती गुम कर दी है, तो मेरा वजूद एग्जिस्टेंस, मैं जो हूं वास्तविक मेरा मैं ये हूं, और ये जो नीचे वाला था ये मैं हुई नहीं। अपने आप को इस रोल से अलग कर देना, तो तृष्णा इच्छाएं, छोटी इच्छा। एक चित्र किसी ने भेजा था जिसमें एक छोटी सी लड़की है, उसके हाथ में छोटा खिलौना है टेडी बेयर, वो कहती है मेरा है मैं नहीं दूंगी, उसके सामने भगवान खड़े हुए हैं और भगवान हाथ में पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर लिए हुए है ऐसे, वो कहते वो दो तो मैं दूसरा बड़ा दूसरा दूंगा अच्छा वाला, पर उसको दिखाते नहीं जो देने वाला है, वो पीछे है, ये उसके ऊपर है अब विश्वास करना कि ये मगर छोटा अगर छोड़ दूंगी तो बड़ा मिलेगा, संसार छोड़ोगे तो वो मिलेगा बड़ा वाला, अगर उसको पकड़ के रखा तो नहीं देगा वो भी दिखाता नहीं है ऐसे किया है उसने पीछे, वो कहता है कि वो दो मैं तुमको अच्छा दूंगा, अगर वो दे दे तो वो देगा, तब तक नहीं देगा वो। देखा है चित्र है ना, कई सब जगह भेजा हुआ है कई लोगों ने, तो संसार की तृष्णा इच्छाएं वासनाएं, थर्स्ट डिजायर्स अर्जेस, ये सारे जो है सारा मनुष्य जाति इनसे युद्ध कर रहा है। पश्चिम के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक या फिर विचारक, उन्होंने कई जगह कहा है, जैसे जीन पॉल सात्र और बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा है जीवन संताप है, इसमें शांति हो ही नहीं सकती, भूल जाओ, ऐसे सिद्धांत रखे विदेश में। एंग्विश, लाइफ इज एन एंग्विश, जबरदस्त निगेटिव ऐसे बहुत सारे थे और लोगों ने स्वीकार भी किए प्यूरिटी के बारे में भी, और शांति की तो बात ही मत करो, शांति जीवन में असंभव है, सीधा वाक्य दिए ऐसे पावरफुल, लाइफ इज एन एंग्विश। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये सब किया है उधर, क्यों? क्योंकि जीवन का स्वभाव ही ऐसा है, तृष्णा इतनी ज्यादा है कि वो देख रहे हैं ना कोई भी शांति नहीं है, शांति में कोई है ही नहीं, सब अशांत है, सब दुखी है, इच्छाएं मिटती नहीं है, चाहे अध्यात्म के किसी ऊंचे पद पर भी चले जाए वहां पर भी इच्छाएं रहती है व्यक्ति की। प्रभ के सिमरन सबके सब सब प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे, प्रभ के सिमरन से सब कुछ पता चल जाता है, एवरीथिंग इज नोन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं जान सकते। कितना पावरफुल वाक्य है ये, प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे, सारा कुछ पता चल जाता है। एक मार्ग है सब पता करना है, एक एक चीज को पता करो, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, क्या है। इधर क्या कहा जा रहा है, एक को जान लो तो सारा उसमें समाया है, इसको छोड़ो फिर एक एक को स्टडी करो फिर भी हाथ में कुछ नहीं आएगा, एक को जानने में सब कुछ जान जाना है, क्योंकि वो क्या है, बीज। एक है प्यार, जैसे इससे प्यार नहीं मिल रहा है, उससे भी प्यार नहीं मिल रहा है, उससे भी प्यार नहीं मिल रहा है। एक है इससे भी सहयोग नहीं मिल रहा है, उससे भी नहीं मिल रहा है, इससे भी नहीं मिल रहा है, इससे भी। अब क्या करे, जिनसे प्यार नहीं मिल रहा, जिनसे सहयोग, अब इनसे स्तुति नहीं मिल रही है। हम काम तो अच्छा कर रहे हैं पर ये तारीफ नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, क्या करे। अब इन सब लोगों की क्या किया जाए, इनकी खुशामत करे, इनके पीछे पड़े, इनकी सेवा करे, चाटुकारिता, फ्लैटरी करे, क्या करे। वो करके भी नहीं मिल रहा है वो करके भी नहीं मिलता है कोई खुशी। सबसे मुश्किल खुश होने वाले ब्राह्मण है, कभी कभी जल्दी नहीं खुश होते, कितना भी संतुष्ट करो तृप्त नहीं होते जल्दी, तो क्या करे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, यदि तुम ब्राह्मण आत्माओं से सहयोग चाहते हो तो बाप से कनेक्शन जो है उसको और पक्का करो, क्योंकि ये सब पत्तियां है, पत्तियों से सहयोग चाहिए तो बाप के सहयोगी बनो तो पत्तियों से सहयोग मिलेगा, बाप से प्यार बढ़ाओ तो बाकी सब से प्यार मिलेगा। बीज में सब कुछ समाया हुआ है, बीज को छोड़कर पत्ते में अगर गए तो फिर दुख होगा। सारा सुख बीज में है, उस बीज से स्वयं को जोड़ना, उस बीज से जोड़ना अर्थात सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण होगी, जो दूसरे से है वो भी पूर्ण हो जाएगी। इच्छाएं, तृष्णाएं, सारा कुछ, सब कुछ, मनोवांछित फल, मनोइच्छित फल भी जो प्राप्त होगा वो उसी के द्वारा होगा। Seek ye first the kingdom of God, बाइबल का वाक्य है कि पहले तुम ईश्वर का राज्य प्राप्त करो। संसार की असंख्य चीजें अपने आप ऐड होगी उसके ऊपर, पर पहले उसको प्राप्त करो। उसको छोड़कर एक एक को खुश करने गए तो कर भी लिया, नहीं हुए खुश तो सब कुछ सूझे, सब कुछ पता चल जाएगा। आज कहा ना, ड्रामा को जान लो, परफेक्ट बनो, विधियां सब बताती है बाबा ने बहुत सारी। प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, मृत्यु का भय। जम शब्द कई बार आया है मृत्यु के लिए, उसका जो त्रास, उसका जो भय है वो नहीं होगा, मृत्यु का भय। एक है आत्मा और परमात्मा का परिचय देना, एक है आत्मा की अमरता का ज्ञान दूसरों को सुनाना, पर खुद ही मृत्यु से भयभीत। शारीरिक व्याधि से डर और मृत्यु का डर, मृत्यु से बहुत डरता है। सबसे ज्यादा डर किसका है व्यक्ति को, मृत्यु। एक मुरली में प्रश्न था, आत्मा को सबसे अधिक प्रिय कौन है, शरीर। शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, जरा सा कुछ हो गया तो बस, जरा सा कुछ हुआ तो हलचल, बहुत ज्यादा हलचल। पर एक रीति से कभी कभी वो अच्छा भी है, क्योंकि उसके बाद ही व्यक्ति सुधरता है। बहुत सारे व्यसन तो तब छोड़ता है, खाने की गंदी गलत आदतें तब छोड़ता है जब कोई रिपोर्ट में गलती गड़बड़ आ गई, और तब उसको पता चला अरे ये तो कहीं और ही चला गया था। तो ये होना भी चाहिए बीच बीच में, धक्का जब लगेगा ना तब थोड़ा सा व्यक्ति संभलता है, नहीं तो फूलते जाते हैं। तो मृत्यु का भय, हाँ, बीमारी के समय क्या क्या करे, ऐसा ज्यादा अच्छा प्रश्न रहेगा। खाली परमात्मा को याद करने से ज्यादा बीमारी के समय क्या क्या किया जाए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, हम्म, सबसे पहले इसमें ये मन की पहले से थोड़ी तैयारी चाहिए कि कोई भी बीमारी कभी भी अचानक आ सकती है, एक आंतरिक थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए। एक दूसरा, बीमारी तब तब आएगी जब जब व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, किसी न किसी रूप से प्रकृति के विरुद्ध गया है। बीमारी तब आएगी जब खान पान में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, गलत हुआ है, कुछ ना कुछ वो खाया है जो कि शरीर को एक्सेप्ट नहीं किया शरीर ने, और शरीर ने बीमारी के रूप में उसको प्रस्तुत किया, पर उस समय आवेश या उस समय जो खा लिया वो रोक नहीं पाए खुद को। चीज इतनी पावरफुल थी और सुगंध इतनी अच्छी थी। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है, थॉमस जेफरसन, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, उसने कहा है हम कभी भी पश्चाताप नहीं करते कम खाने के लिए। कोई ऐसा पश्चाताप कोई करता है, कल मैंने नाश्ता कम क्यों खाया, ज्यादा खाना चाहिए था, ऐसा कोई करता है? कभी भी नहीं। कल रात को कितना भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो, दूसरे दिन पश्चाताप करता है कि मैंने कम क्यों खाया। पश्चाताप किसके लिए करता है? ज्यादा के लिए। मैं ज्यादा खाने के लिए पश्चाताप करता है, कम के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं करता है। यू नेवर रिपेंट फॉर हैविंग ईटन लेस, कम खाने के लिए नहीं। तो एक तो ये, उसके बाद में ये सब कुछ अच्छे से करने के बाद में भी, सब कुछ किया है फिर भी बीमारी आ गई। अब आते ही यहां पर शरीर को थोड़ा आराम देना होता है। यहां पर कभी कभी बहुत सारी बीमारी केवल आराम से ठीक हो जाती है, पर यदि बीमारी में भी उसको खींचते रहे तो फिर वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है शाम तक। एक तो ये, दूसरा जैसे ही बीमारी आना चालू हुई या लगा अब आ रही है, ठीक है, संकेत आने लगते हैं उसके, बॉडी पेन या कुछ या कुछ या कुछ या कुछ, अपने मन को संकल्प देना चालू कर देना है। मन को तभी से संकल्प, अभी आई नहीं है, आना यहां पर है, अभी हम यहां हैं, यहां से थोड़ा लग रहा है, तभी से अपना, तभी मन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है पहले ही। जैसे रात में लग रहा है थोड़ा सा गर्म लग रहा है बुखार, तो कल अमृत वेला थोड़ा लेट उठेंगे पहले ही सोच के रखा है, अभी बुखार आया नहीं है, इधर लगा जस्ट थोड़ा सा लग रहा है, थर्मामीटर किसी को लगाने नहीं देंगे क्योंकि नहीं आया तो, थर्मामीटर में नहीं आया तो फिर वो तो और ही, हमारा भी तो कुछ है बुखार वगैरह तो लगता है, तो पहले ही एक कमजोर संकल्प करता है व्यक्ति कि मैं थोड़ा अभी इस तरह से थोड़ा सो जाऊंगा थोड़ा ज्यादा। चलो कभी कभी वो भी ठीक है, जब हमको लगता है शरीर को आराम चाहिए और ओवर एक्सर्शन हो गया है, यहां से ही थोड़ा संकल्पों पर काम करना चालू कर देना है कि यदि बीमारी आ भी जाती है मैं अपनी स्थिति को नहीं छोड़ूंगा। अगर बीमारी की वजह से 3 दिन सोना पड़े, एडमिट होना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े, वो सारी जो क्रिया है वो सारी मैं योग युक्त होकर करूंगा। एक भर्ती करना है वो भी हो जाऊंगा तो योग युक्त होकर, दवाई अगर लेनी पड़े तो वो दवाइयां लूंगा, परंतु एक एक दवाई में जैसे ईश्वरीय बल भर रहा हूं, ये टैबलेट है उसको दृष्टि देते हुए और फिर उसको स्वीकार कर लेना, और ये संकल्प कि ये एक गोली से मैं ठीक हो जाऊंगा, बस इसको लेते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। लोग पहले से 10 साइड इफेक्ट पढ़ के आते हैं, लिखने के बाद ही पहला प्रश्न वो होता है इससे साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे ये तो नहीं है, और जो गांव वाले मरीज होते हैं ना उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत बीमार आते हैं, दवाई लिखो ले लिए और ठीक हो गए और चल दिए घर। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उसके उतने ज्यादा प्रश्न और कई लोग बहुत सारा नेट पे पूरा ढूंढ कर लाते हैं और उसमें से फिर देखते ये जो गोली दिया था ना उसका एक साइड इफेक्ट है, पता कहां से चला, नेट से, कहां खोलो तो वो उसके 50 साइड इफेक्ट में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एक छोटा सा, वो उसको हो रहा है और वो इस गोली की वजह से हो रहा है। वो भी ठीक है चलो, बट लॉ ऑफ फेथ भी कुछ होता है, विश्वास का नियम, तो अपने मन को थोड़ा तैयार करना और जो बीमारी आई है उसके प्रति निगेटिव नहीं हो जाना। अरे मुझे पुरुषार्थ करना है, नहीं बीमारी क्यों आ गई, और मेरा योग चला जाएगा, बीमारी क्यों आ गई। व्यक्ति निगेटिव हो जाता है अपने शरीर के प्रति और बीमारी के प्रति, इतनी दवाई आ रही मैं नहीं ले सकता, वहां पर भी निगेटिव हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सक, सबके प्रति मन में निगेटिव संकल्प आने लगते हैं। एक ऐसा है कि बीमारी आ गई, मैंने स्वीकार कर लिया, अब ये बीमार ठीक होगी, दो तीन दिन में ठीक होगी, उस दो तीन दिन में अपनी स्थिति को शक्तिशाली रखूंगा, बीमारी अगर मैं अगर दवाइयां लेनी पड़ी तो दवाइयां भी ले लूंगा, पर अपने आप को स्टेबल रखूंगा, और सोना पड़े लेटना पड़े उस अवस्था में भी मैं मुरली का कुछ ना कुछ चिंतन करूंगा, कोई पॉइंट का चिंतन करो, और चिंतन नहीं हो रहा है क्लास सुनूंगा। हाँ, भोगना की योजना बनाओ, उसकी कोई ना कोई क्लास सुनूंगा, उसमें भी प्लानिंग करना है, ये क्लास सुबह सुनूंगा, ये क्लास दोपहर को सुनूंगा, या कोई मुरली सुनूंगा, वरिष्ठ भाइयों दादियों का कुछ तो सुनूंगा, तो ये पहले से हमने प्लानिंग करके रख दिया है। अब वो जो भोगना का समय है, वो जो क्या कहते बाबा, बेड के लिए कुछ कहा है ना, पलंग को, पलंग पलंग पे प्लानिंग, पलंग साधन बन जाए प्लानिंग करने का। हाँ हाँ, बस तो इस तरह से उस स्टेज से धीरे धीरे स्वयं को, और पॉजिटिव संकल्प, जैसे एक टेक्निक बताई जाती है इंग्लिश में, इट इज पासिंग अवे, इट इज पासिंग अवे। जैसे छोटी सी बच्ची है, उसको खांसी हो गई, वो सोचती है मेरी खांसी जा रही है, मेरी खांसी ठीक हो गई, मेरी खांसी ठीक हो गई, ये बोलते रहना, ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है कि अभी बीमारी आ गई, मैं बीमारी से ठीक हो गया हूं, हो रहा हूं नहीं हूं, देखना मैं ठीक हो गया, अपने डिपार्टमेंट में वापस काम कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो ये तो, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे डिस्कस उसको आगे। प्रभु का सिमरन, हाँ, जमत्रासा नहीं, जमत्रासा मृत्यु का जो भय है, इसके लिए एक है अपनी मृत्यु को इन आंखों से देख लेना, डर खत्म हो जाएगा। मैं आत्मा, ये शरीर मर चुका है, ये यहां है, लोग लेके जा रहे, चिता पर रखा, अग्नि जला रहे, भस्म हो गया, मैं ऊपर से देख रहा हूं, यही है वो शरीर जिसको इतना मैं देखभाल करता था, देखो कैसे जल रहा है, देखो कैसे मर रहा है, चिताएं उठ रही है, और देख रहा हूं इर्द-गिर्द कोई खास दुखी नहीं है, सब ठीक है, कोई तो बोल रहा है अच्छा ही हुआ गया, कोई सोच रहा है अच्छा है, कब से यही तो सीट चाहिए थी मुझे, यही बाधा था, ये चला गया, अब मेरा रास्ता क्लियर हो गया, कितने वेट कर रहे हैं अच्छा ही हुआ गया। तो अपने मृत्यु को देख लेना, वो लगता है इतना लगाव, इतना लगाव, इतना लगाव। एक पति था, उसका अपनी पत्नी से इतना लगाव था, इतना प्यार था, पर उसको एक बार वैराग आ गया, गुरु के पास गया, उसने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो उसने कहा आ जाओ, तो बोलते कैसे आऊं, पर मेरी पत्नी का मेरे से इतना प्यार है, सच्चा प्यार है उसका, मैं उसको दुख कैसे दूं, कोई उसका साधारण प्यार नहीं है, रियल लव। तो अच्छा, गुरु कहते ऐसा भी होता है, एक काम करो फिर, वो कहता है मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, जड़ी बूटी, वो खा लेना, वो खाने के बाद कुछ समय के बाद तुम ऐसे लगोगे जैसे मर गए हो, ऐसे तुम्हारा शरीर जो है ना, और तुम उसको एक आसन देता है ऐसा, एक बड़ा कठिन वाला, हाथ इधर और उधर से, उस आसन में बैठ के मरने की तुम एक्टिंग, मतलब वो दवाई खाते ही तुम्हारा हाल वैसा हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाओगे थोड़े समय के लिए। तो वो खा लेता है उस मुद्रा में, और फिर पत्नी देखती है अरे क्या हुआ, अरे ये तो मर गया, फिर दुखी होती है, इतनी दुखी होती है, इतनी दुखी होती है, सबको बुलाती है, चिल्लाती है, सारे लोग आके बैठते हैं, फिर अब क्या करे, अब तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना कमरे से, उनका दरवाजा रहता है छोटा, तो लोग कहते हैं अभी क्या करे, दरवाजे से तो निकल नहीं रहा है, दरवाजे को काटते, पत्नी कहती है नहीं नहीं दरवाजे को मत काटा, ये बहुत महंगा दरवाजा है, एक काम करो इसके हाथ पैर काट दो दरवाजा थोड़ी ना काटना होता है वो तो कैसे भी दरवाजा बाद में को, ये तो गया ऑलरेडी, इसके हाथ पैर काटो। तब तक इसको जागाता है, वो गुरु की बात याद आती है कि पत्नी का बहुत ही सच्चा प्यार है, वो कहता है माफ करना मैं जा रहा हूं। सुरेंद्र मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ हित सब करही प्रीति, सुर नर मुनि सबकी एक ही रीत है। कौन सी? स्वार्थ हित। सब कर रही प्रीति, स्वार्थ के लिए प्रीत कर रहे, और कोई कारण नहीं है। प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, सारी आशाओं को पूर्ण हो जाती है एक प्रभु की याद से। सारी इच्छाएं, जन्म जन्म की इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं उसकी एक, बाकी संसार से कभी नहीं पूर्ण होगी। स्वार्थी है संसार। अगला है प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। मन की जो मल है, मिट्टी, धूल, डर्ट, ये बिना उसकी याद के नहीं जाएगा। अमृत नाम हृदमाही समाई, हृदय में अमृत नाम जब समाए, समा जाएगा उसकी याद से। और आगे प्रभु जी बसे सात की रसना, जो साधक है या साधु है या योगी है उसकी जीभ पर प्रभु का नाम बैठ जाएगा, उसकी जीभ पर उसका नाम। वैसे आता नहीं है इतना जल्दी, नाम आता है क्या? एक व्यक्ति होता है उसने अपने पहले से प्लानिंग करके रखता है कि मैं मरूंगा ना तो भगवान का नाम आना चाहिए, और नहीं आया उसकी प्लानिंग। पहले बेटे का नाम शंकर, दूसरे बेटे का नाम श्याम, तीसरे बेटे का नाम राम, और पत्नी का अपना बेटी का नाम राधा। तो इनकी भी याद आ जाए तो भी हो गया ना, भगवान का नाम आ जाएगा, क्योंकि तो अजामिल को तो वैसे ही हो गया ना बाय मिस्टेक। उसने तो बेटे का नाम लिया था नारायण, नारायण को लगा कि मेरा नाम लिया और उसको छुड़ा दिया यमदूतों से। तो वो मरने को होता है, कहता है मेरा पहला बेटा कहाँ है? तो वो पत्नी कहती है ये है आपका पहला बेटा। वो ये भूल ही जाता है कि ये कहना कि ये शंकर है। कम से कम उतना तो बोलता, पत्नी सोचती है ये देखो कौन है, तो वो कहता है ये मेरा पहला बेटा। ओह ओह, फिर ये देखो कौन है, ये मेरा दूसरा बेटा। ये देखो कौन है, ये मेरा तीसरा बेटा। और ये कौन है, वो कहता है मेरी बेटी। तो बोलते हम सब आपके साथ है, सारे मिलके बेड के पास बैठ जाते, वो मरने को है। वो कहता है सब यहाँ है तो दुकान पे कौन बैठा है फिर? तो बुद्धि संसार में है। इसलिए प्रभु जी बसे सात की रसना, नानक जन का दासन दसना। ऐसा अगर कोई हो तो मैं उसके दासों का दास हूं, नानक कह रहे हैं। नानक जन का दासनी दासना, ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो जिसके मन में भगवान समाया हुआ, जिसकी जीभ पर प्रभु का नाम है। मराठी में एक संत कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी न अंगन त्याचे दायित्व करी न। यदि कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो बोलता है वही करता है, उसका घर का आंगन मैं अपने शरीर से झाड़ूंगा। अंगे झाड़ी न अंगन त्याचे दायित्व करी न, उसका दास बनूंगा। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा जिसने प्रभु के नाम को अपने हृदय में समाया हुआ है और जिसकी जबान पर उसका नाम है, उसके दास का भी दास मैं बनने को तैयार हूं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, इतना भगवान से प्यार हो, भगवान के प्रेम के आगे संसार का प्रेम शूद्र तुच्छ जिसको नजर आए, किसी का प्रेम नहीं चाहिए संसार के, वे सारे जो प्रेम है संसार के गौन है इस परमात्मा प्रेम के आगे। फंसते रहते एक दूसरे में, एक दूसरे को याद करते रहते, एक दूसरे के लिए मरते हैं, ये प्रेम नहीं, वो प्रेम सर्वोच्च जो प्रेम है उसमें स्वयं को डुबो के रखना है। ओम शांति।